अवस्थाओं से गुजरती है, सतो, रजो और तमो। जब मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में होती है, तभी प्रकृति भी सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करती है। अर्थात प्रकृति जो जड़ है, वह मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशंस और विचारों के प्रभाव में आकर उसी स्थिति में स्थित हो जाती है। तो सतो, रजो और तमो क्या है, आइए इसका ज्ञान हम जानने की कोशिश करते हैं गीता रहस्य के 37वें एपिसोड में।
ओम शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय विशेष रूप से प्रकृति के और मनुष्य के सतो, रजो और तमो, इन तीन गुणों की व्याख्या करता है। इन सब को जानना भी मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य इन तीनों की गति को जान ले तो वो तमोगुण से बचकर सदा अपनी स्थिति सतोगुण में रख सकता है। परंतु यदि इन तीनों का ज्ञान ही न हो तो मनुष्य संसार के प्रवाह में बहते हुए तमोगुण की ओर बढ़ते हुए विनाश को प्राप्त हो सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता हम सभी को जीवन जीने की, श्रेष्ठ तरह से जीवन जीने की, सुखपूर्वक जीवन जीने की बहुत सुंदर प्रेरणा देती है। 14वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानों में भी जो परम ज्ञान है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, अब मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। तो परमात्मा स्वयं को बीज रूप कहते हैं पिता और प्रकृति को माता। देखिए बहुत सुंदर समन्वय है। आत्मा गर्भ में शरीर धारण करती है, शरीर प्रकृति से बनता है, शरीर को उत्पन्न करने वाले लौकिक माता पिता होते हैं। मां के गर्भ में शरीर बढ़ता रहता है, परंतु क्योंकि प्रकृति से शरीर बन रहा है इसलिए प्रकृति को माता कहा है। योनि धारण करने वाली माता प्रकृति और बीज धारण करने वाला, बीज डालने वाला परमपिता परमात्मा शिव। तो वास्तव में संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार परमात्मा शिव है। और प्रकृति और पुरुष का जब मेल होता है तो ये संसार चक्र आगे चलता है। तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। आत्मा, प्रकृति और परमात्मा तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। इसमें परमात्मा और आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। जड़ का यहां तात्पर्य होता है कि प्रकृति में सोचने विचारने की शक्ति नहीं, फीलिंग्स नहीं। ये फीलिंग्स केवल आत्मा में होती हैं या परमात्मा में होती हैं। आत्मा के वाइब्रेशंस के कारण ही कहीं कहीं आजकल प्रकृति में भी फीलिंग्स महसूस की जाती हैं। वैज्ञानिक ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि प्रकृति में भी फीलिंग्स हैं, परंतु जड़ होने के कारण ये फीलिंग्स प्रकृति की नहीं, ये फीलिंग्स आत्मा के वाइब्रेशंस के कारण होती हैं। तो पुरुष और प्रकृति का इस संसार में मिलन होता है। सतो, रजो और तमो से दोनों ही गुजरते हैं। कई विद्वान, कई दार्शनिक ऐसा सोचते हैं कि आत्मा तो इन तीनों गुणों से नहीं गुजरती, वो सदा ही पवित्र है, केवल प्रकृति में ही ये तीनों गुण विद्यमान हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा पर डिपेंड करती है प्रकृति। प्रकृति स्वयं में जड़ है, उसमें स्वयं में परिवर्तन की शक्ति नहीं है। उसके परिवर्तन का आधार मनुष्य आत्माएं हैं। मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन से प्रकृति को संपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो सत्यता तो यही है कि आत्मा ही सतो, रजो और तमो तीन स्थितियों से गुजरती है, और आत्मा के वाइब्रेशंस के कारण ही प्रकृति में भी ये तीनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य के अंदर सतो प्रधानता का भाव प्रबल रूप से होता है, तब उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसका इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, उसकी भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, उसको हर तरह का सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, परिवारों में और उसके अपने चित्त में निस्वार्थ स्नेह रहता है। ये स्थिति उस समय प्रकृति की भी रहती है। मनुष्य के वाइब्रेशंस के कारण तब प्रकृति भी संपूर्ण रूप से सुखदायी रहती है। तब प्रकृति मनुष्य को सब कुछ स्वतः ही प्रदान करती है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति का निर्माण मनुष्यात्माओं की पालना करने के लिए है। प्रकृति उन्हें सब कुछ दे रही है। हम सब रोज देख रहे हैं, प्रकृति से पानी मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, उपभोग की सारी सामग्री हमें प्रकृति के तत्वों से प्राप्त हो रही है। तो इस तरह आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। जब आत्मा की स्थिति नीचे उतरती है, क्यों उतरती है इसकी चर्चा भी हम करते हैं, परंतु जब आत्मा रजो प्रधान स्थिति में आती है तो उसमें आसक्तियां बढ़ती हैं, लोभ बढ़ता है, काम विकार की उत्पत्ति होती है और अनेक दूसरे विकार भी प्रवेश करने लगते हैं। इसका ही प्रभाव होता है कि मनुष्य धीरे धीरे दुखों का अनुभव करने लगता है। दुखों के अनुभव से भक्ति का प्रारंभ होता है, क्योंकि जब मनुष्य दुखी होता है तब वो परमात्मा की ओर या देवी देवताओं की ओर बढ़ता है। उसकी भावनाएं परमात्मा के लिए जागृत हो जाती हैं, और वही स्वरूप प्रकृति का भी होता है। प्रकृति जब वो सतोवर्धान थी तो सभी ऋतुएं ठीक ठीक समय पर चलती थी, ठीक समय पर बरसात होती थी, उचित मात्रा में होती थी। लेकिन जब प्रकृति का वो स्वरूप बदल जाता है, प्रकृति रजो में आ जाती है, तो कहीं गर्मी पड़ने लगती है, कहीं सर्दी ज्यादा होने लगती है, कहीं बरसात ज्यादा हो जाती है, और इस तरह प्रकृति में इम्बैलेंस प्रारंभ हो जाता है। प्रकृति जो पहले संपूर्ण सुखदायी थी, उसके सुखों में थोड़ा थोड़ा दुखों का समावेश भी हो जाता है। ऐसा लंबा काल रजो स्थिति में गुजरने के बाद धीरे धीरे ये रजो स्थिति भी मनुष्यात्मा की पूर्ण हो जाती है और वो तमो प्रधानता की स्थिति की ओर बढ़ती है। तमो प्रधानता आ जाने से मनुष्य के विचार दूषित होने लगते हैं, उसकी संपूर्ण पवित्रता नष्ट हो जाती है। उसके चित्त में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो और बहुत सारे विकार हैं, उनका प्रकोप होने लगता है और इसलिए मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। इसका ही प्रभाव फिर से प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति संपूर्ण रूप से दुखदायी बन जाती है। प्रकृति में समय पर बारिश नहीं होती, कहीं अकाल पड़ने लगता है, बारिश होती है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान चलने लगते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। इस प्रकार प्रकृति का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाता है। प्रकृति मनुष्य की पालना करते करते भी खाली हो जाती है, थक जाती है, और अब प्रकृति और पुरुष का जो मेल है वो डगमगाने लगता है। इतना होता है कि जब मनुष्य तमो प्रधान स्थिति में पहुंचता है तो वो प्रकृति के महत्व को भी नहीं समझता, उसमें स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, लोभ वृत्ति उसके अंदर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, इसलिए वो प्रकृति का विध्वंस करने लगता है। और परिणाम ये होता है कि अंत में तमो प्रधान प्रकृति तमो प्रधान मनुष्य का संहार कर देती है और फिर से इसमें परिवर्तन होता है सतो प्रधानता का। अब हम आपके सामने ये गुह्य चिंतन रख रहे हैं कि आत्माओं में और प्रकृति में ये जो स्थितियां बदलती हैं, सतो से रजो, रजो से तमो, और तमो के बाद क्या होता होगा, तमो के बाद पुनः उसकी स्थिति सतो में चली जाती है, ये सब कैसे होता है, इसका काल कौन कौन सा है, क्यों आत्मा ने सतो प्रधान स्थिति को छोड़ा, ये जो संसार का चक्र है, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों के रूप में घूमता रहता है। जब सतयुग है, क्योंकि सतयुग की स्थापना परमात्मा ने की है और परमात्मा संपूर्ण है, सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है, सुखों का सागर है, तो संपूर्ण परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि में उसके ये सारे गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये संसार भी तब सतो प्रधान होता है, मनुष्य का जीवन बिल्कुल पवित्र होता है, उसके अंदर संपूर्ण शक्तियों का समावेश होता है, संपूर्ण सुख उसके पास होते हैं, किसी भी तरह का रोग शोक इस स्थिति में नहीं होता है। ये स्थिति सतयुग में चलती है, त्रेता में भी चलती है। संसार के इस काल को ही स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ सतो प्रधान स्थिति और सतो स्थिति दो स्वरूप इसके हो जाते हैं। ये स्थिति क्यों नीचे उतरती है, इसके बारे में बहुत गहराई से हमें विचार कर लेना है। देखिए, दो काम होते हैं। एक तो आत्मा अपने मन के माध्यम से निरंतर सोचती है, वो अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करती है। मन और बुद्धि का प्रयोग करने से आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे यूज होने लगती है। दूसरी बात, आत्मा क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर में रहती है, शरीर में रहते रहते हजार साल के बाद उसमें शरीर के प्रति थोड़ी थोड़ी भान, अवेयरनेस, फीलिंग्स होने लगती है, शरीर की फीलिंग्स होने लगती है, अर्थात धीरे धीरे देह के संपर्क में रहते हुए देह का प्रभाव आत्मा को स्पर्श करने लगता है, और इन दो कारणों से ये सतो प्रधान स्थिति सतो में आ जाती है। और इसी तरह त्रेता के अंत तक आते आते, क्योंकि संपूर्ण त्रेता युग में 1250 वर्षों में आत्मा फिर से अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करती है, कर्म करती है, और शरीर के साथ में रहते रहते शरीर के प्रति और अधिक आसक्त हो जाती है, शरीर के स्पर्श का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, और त्रेता के अंत तक आते आते आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर संपूर्ण देहभान के स्वरूप में आ जाती है, तब ये सतो स्थिति संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। प्रकृति में भी इसी तरह गिरावट आती है, क्योंकि मनुष्य जिस तरह के विचार करता है, मनुष्य के अंदर जितनी पवित्रता होती है, जितनी श्रेष्ठता होती है, उसके वाइब्रेशंस उससे चारों ओर फैलते हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि प्रकृति मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए अत्यधिक सेंसिटिव है, संपूर्ण रूप से सेंसिटिव है। तेजी से आत्मा के सब वाइब्रेशंस प्रकृति ग्रहण करने लगती है, तो यही कारण है प्रकृति में भी गिरावट आने का। तो चाहे प्रकृति में गिरावट आए, चाहे उसका उत्थान हो, ये जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से मनुष्य आत्माओं की होती है। साथ में आपके सामने ये बात भी हम स्पष्ट कर दें कि केवल प्रकृति नहीं, इसमें पशु पक्षी जीव प्राणी और जितनी भी रचना है, उन सब पर भी मनुष्य के वाइब्रेशंस का प्रभाव ही पड़ता है, मनुष्य की स्थिति का ही प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य आत्मा सतो प्रधान है, तो जीव जंतु पशु पक्षी सभी सतो प्रधान है, और जब मनुष्य आत्मा की सतो स्थिति समाप्त हो जाती है, तो इन सब की सतो स्थिति भी समाप्त हो जाती है। याद दिला दें आपको कि जब आत्मा सतो है, तो उसमें काम विकार का कहीं लेश मात्र भी नहीं होता। आत्मा संपूर्ण रूप से पवित्र होती है। संतान उत्पत्ति भी संकल्प शक्ति से, अमैथुनी योग शक्ति से होती है। द्वापर युग जैसे ही प्रारंभ होता है, तो क्योंकि आत्मा देह अभिमान में आ गई, देह के साथ रहते रहते स्वयं को विस्मृत हो गई, इसलिए आत्मा में आसक्ति, लोभ वृत्ति, थोड़े थोड़े पाप करने की प्रवृत्ति, थोड़ा थोड़ा जीवन में स्वार्थ भाव, दूसरों के लिए अशुभ भाव, दूसरे की संपदा को छीनने की प्रवृत्ति, इन सब का प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ हो जाता है, और इस कारण शुरू होते हैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े पाप कर्म। अब फिर से द्वापर युग में आत्मा मन बुद्धि का प्रयोग करती है, तेजी से प्रयोग होता है, क्योंकि पाप कर्म होते हैं, विकारों की प्रवेशता हो जाती है, यहीं से कामनाएं और काम की उत्पत्ति होती है, और इन सब कारणों से आत्मा की शक्तियां तेजी से नष्ट होने लगती है। इस कारण से ये रजो स्थिति, जिसमें मनुष्य के पास सुख तो था पर दुख ने उसमें प्रवेश कर लिया था, उसकी पवित्रता लगभग नष्ट हो गई थी, सभी विकार धीमी गति से उसमें प्रवेश कर गए थे, थोड़े थोड़े पाप कर्म भी होने लगे थे, इसलिए उन कर्मों ने मनुष्य आत्माओं को बंधन में बांध दिया। जब उसकी सत्वप्रधान स्थिति थी तो कर्म आत्मा को बांध नहीं रहे थे, वहां सुख का संबंध था, ज्ञान का संबंध था। लेकिन द्वापर युग में पाप कर्मों ने, आसक्त कर्मों ने, लोभ वृत्ति ने, अपवित्रता ने मनुष्य को बांधना शुरू किया और इस तरह वो रजो प्रधान स्थिति भी आत्मा की समाप्त हो गई, प्रकृति की समाप्त हो गई और मनुष्य आत्मा ने प्रवेश किया अपनी तमो स्थिति में, जो बाद में चल के तमो प्रधानता में बदल गई, जहां काम विकार का प्रकोप होने लगा, जहां लोभ वृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी, क्रोध बढ़ गया, मनुष्य के अंदर अहंकार बढ़ने लगा, वो ईर्ष्या द्वेष का शिकार होने लगा, उसके विचार पूर्ण रूप से दूषित हो गए, उसकी वृत्तियां बिल्कुल निगेटिव हो गई, उसमें प्रमाद, आलस, सुस्ती, अलबेलापन, इन सभी मनोविकारों ने प्रवेश कर लिया और दुख बढ़ने लगा, पाप कर्म होने लगे। मनुष्य भूल गया कि पुण्य कर्म और पाप कर्म क्या होता है। वो पाप कर्म में इतना लिप्त हो गया कि पाप के द्वारा धन कमाकर अपने परिवार की पालना करने लगा, पाप के द्वारा धन कमाकर सुखी जीवन महसूस करने लगा, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं था, उस सुख में समाया था दुख। यह तमोप्रधान स्थिति, इस तमोप्रधान स्थिति का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रकृति सूक्ष्म वाइब्रेशंस को ग्रहण करके अपनी सात्विकता को, अपनी शुद्धि को खो देती है। इस तरह तमोप्रधानता अपने प्रकोप में पहुंच जाती है। जो सतोप्रधान स्थिति थी वो पूरी नीचे गिर आती है और तमोप्रधानता में हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मानसिक परेशानियां, तनाव, रोग, शोक, ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। जब कलयुग का अंत आ जाता है तब पाप कर्मों के कारण, प्रकृति की तमोप्रधानता के कारण मनुष्य अनेक रोगों का भी शिकार हो जाता है। आत्मा शरीर के बंधन में पूरी तरह बंध जाती है, उसे महसूस ही नहीं होता कि वो कौन है और ये बंधन उसे अनेक तरह के कष्ट देता है। अब इस तमोप्रधान स्थिति को पुनः सतोप्रधान स्थिति में बदलना है। कैसे बदले? आत्मा क्योंकि अपनी शक्तियां यूज करती आ रही थी, मन और बुद्धि के माध्यम से, कर्म और विकर्म के माध्यम से, इसलिए उसमें गिरावट हुई। लेकिन अब चढ़ाई करनी है, अब उत्थान करना है, अब इस तमोप्रधानता को सतोप्रधानता में ले जाना है, अब इस अपूर्ण स्थिति को संपूर्णता की ओर ले जाना है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? प्रकृति भी खाली हो चुकी है, मनुष्य आत्माएं भी खाली हो गए, जो सतयुग में देवी देवता थे उनका देवत्व भी नष्ट होकर उनमें आसुरी गुणों ने प्रवेश कर लिया। बचता है केवल एक, जो सदा संपूर्ण है, जो निर्विकार है, निराकार है, संपूर्ण पावन है, सर्वशक्तिवान है, अजन्मा है, जिसकी शक्तियों में, पवित्रता में कभी भी ह्रास नहीं होता, पतन नहीं होता। अब जब सभी आत्माएं उससे अपने बुद्धि योग को जोड़ें, तभी आत्मा की ये तमोप्रधान स्थिति समाप्त होकर सतोप्रधान स्थिति में बदल सकती है। लेकिन परमात्मा से संबंध स्थापित कौन कराए? गीता पढ़ते पढ़ते तो किसी का भी संबंध सर्वशक्तिवान से नहीं हुआ। और जब इस संसार में तामसिकता बढ़ी, जब मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बनी, तो गुरु लोग भी अपनी सात्विक स्थिति को छोड़कर इसी प्रभाव में बह गए और उन्होंने सबका ध्यान परमात्मा की ओर न ले जाकर अपनी ओर ही झुका दिया। नाम देने लगे, मालाएं फिरवाने के लिए कहने लगे, मंत्र देने लगे, अपनी साधनाएं करवाने लगे, अपनी पूजा करवाने लगे, परमात्मा को भुला दिया। इसलिए तामसिकता संपूर्ण रूप से विकृत रूप लेती गई। इसी कारण से इस तामसिकता के युग में, कलयुग के अंत में, सबको सतोप्रधान बनाने के लिए फिर से परम पवित्र, पतित पावन, पवित्रता के सागर परमात्मा को ही यहाँ आना पड़ता है और ये वही समय चल रहा है, वो आकर फिर से ज्ञान और योग की शिक्षा देकर अपने से सभी आत्माओं का नाता जुड़वाते हैं, योग सिखाते हैं, और उस योग अभ्यास से जब सभी का नाता सर्वशक्तिवान से जुड़ जाता है, तब सर्वशक्तिवान की शक्तियां आत्मा में आने लगती है, उसकी पवित्रता आत्मा में प्रवेश करने लगती है, और आत्माएं तमोप्रधान से निकलकर तमो की ओर चलती हैं, और अच्छी साधना करने के बाद तमो से रजो की ओर चलती हैं, रजो प्रधान हो जाती हैं, और उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन से प्रकृति भी तमो प्रधान से तमो और तमो से सतो की ओर चलने लगती है। जैसे सतो से तमो गिरावट हुई निगेटिव वाइब्रेशंस के कारण, तमो से सतो की ओर उत्थान होगा अब श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के कारण, जो आत्माओं से प्रकृति को जाएंगे, और फिर जब और साधना की जाती है तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो ये समय चल रहा है जब हमें स्वयं को भी सतो प्रधान बनाकर प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस देकर उसे भरपूर करना है, उसे सात्विक बनाना है, क्योंकि ऐसा समय फिर से आने वाला है जबकि पवित्र आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, पवित्र और सतो प्रधान प्रकृति से मिलन करके इस संसार को स्वर्ग बनाएगी, और इस संसार में संपूर्ण सुखों का आविर्भाव होगा, जहां कोई स्वार्थ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, रोग नहीं होंगे, किसी तरह की मानसिक और शारीरिक अशांति नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, सभी के बीच बहुत अधिक प्रेम भाव बढ़ा हुआ होगा। तो अब हम सभी की जिम्मेदारी है सबसे पहले ये रियलाइज करना कि मनुष्य की स्थिति तमोप्रधान हो चुकी है, और योग युक्त होकर परमात्मा से योग सीखकर श्रेष्ठ और पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को देकर उसे भी तमो से सतो प्रधान बनाना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो केवल उन लोगों की तरह हम भी चिल्लाएंगे जो आज पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, जो रोज ये चिल्ला रहे हैं कि संसार का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओजोन के होल्स बढ़ रहे हैं, प्रकृति में ये हो रहा है, विनाश हो सकता है, मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है, लेकिन उसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। समाधान ये है कि सभी परमात्मा से जुड़कर उसे पवित्र वाइब्रेशंस लेकर प्रकृति को शुद्ध करें, तो ये प्रकृति का प्रदूषण भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।
जब हमें सतो, रजो और तमो गुण का ज्ञान हो जाता है तो हर आत्मा का यह लक्ष्य होता है कि वह कभी सतो से तमो प्रधान स्थिति में न आए, वह अपनी अवस्था को हमेशा सतो प्रधान बनाए रखे। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आत्मा को परमात्मा से अपना संबंध जोड़े रखने की आवश्यकता होती है। तो इसे कैसे जोड़ें? इसका ज्ञान तो आपको मिल ही गया है, तो क्यों ना हम आज से ही स्वयं को भरपूर कर अन्य आत्माओं व प्रकृति को अपने विचारों और वाइब्रेशंस द्वारा सतो प्रधान स्थिति में ले जाने का प्रयास करें, और एक ऐसे सुंदर समाज के निर्माण का संकल्प करें जहां न मन का न कोई तन का रोग हो, जहां प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी सुख व शांति से रहें। इसी के साथ हम 37वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें जरूर लिख सकते हैं। हमारा पता तो आप जानते ही हैं, तो हमें इजाजत दीजिए।
हमारा धर्म है, अमन हमारा।